अच्छा भाई, हम तरकीब कर रहे थे भाई। सबसे पहले हमने जुमला इस्मिया की तरकीब शुरू की। मैंने आपको बताया था एक है जुमला इस्मिया और एक है जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वो है जिसका पहला जुज इसम हो, जुमला फेलिया वो है जिसका पहला जुज फेल हो। फिर हमने जुमला इस्मिया की तरकीब शुरू की और मैंने आपको बतलाया कि जुमला इस्मिया के अंदर दो चीजें होती हैं, एक है मुबतदा और एक है खबर। आसान लफ्जों में मुबतदा वो जिसके बारे में बात की जाए और खबर वो जो बात की जाए। आप भी अपने कलाम में गौर कर लें, आप जब भी बात करते हैं किसी चीज के बारे में करते हैं और कोई बात करते हैं, कोई ना कोई चीज जो होती है आपके कलाम उर्दू के कलाम में भी क्या होगी, मुबतदा यानी मुस्नद इलैह होगी और कोई ना कोई आगे खबर यानी मुस्नद आएगा। भाई मुबतदा के अंदर जो है असल है कि वो मारिफा हो। कभी कभार मुबतदा नकेरा भी आ जाता है लेकिन वो खास खास जगहें हैं, खास शर्तें हैं। और खबर के अंदर असल ये है कि वो नकेरा हो भाई, और कभी कभी खबर भी मारिफा आ जाती है। तो अब आपको मारिफा और नकेरा की पहचान होनी चाहिए। तो मैंने आपको बतलाया था कि मारिफा कुल कितने हैं, सात हैं। याद रखो इस तरकीब में मैं जो कुछ बताऊं बहुत ही जरूरी बातें मैं बताता हूं, बहुत ही जरूरी, उनमें से कोई एक बात भी एक दफा आ जाए तो आपने उसको भूलना नहीं है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है, उसका फिर तकरार करो, बार बार तकरार करो। मेरी भी कोशिश होती है कि चीजों का बार बार तकरार करवाता रहूं यहां तक कि आपके जहन में जम जाए। लेकिन असल चीज होती है तालिब इल्म की अपनी मेहनत। तो आप जब बाद में वक्त मिले तो इसको फिर दोहराएं, इन सारे जाब्तों को भी दोहराएं, इन सारी बातों को भी दोहराएं। जो तरकीबें आपने की होती हैं जो मैं करवा देता हूं फिर उनको दोबारा किया करें भाई, ताकि आपकी जुबान पर रवा हो जाए, आपको महारत आपकी बढ़ती चली जाए। और मैं बहुत ही कोई जरूरी बात होती है वो करता हूं, आम इधर उधर की बातें इस तरकीब में मैं नहीं करता, वरना बड़ी लंबी तफसील हो सकती है। तो जो कुछ मैं बता दूं उसको आपने अच्छी तरह समझना है। अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछें, और अगर मुझसे नहीं पूछा अपने साथियों से पूछें। जब तक हल ना हो उसको छोड़ें ना। तो मुब्तदा के अंदर असल है मारिफा होना और खबर में असल है नकेरा होना। तो अब आपको मारिफा और नकेरा की पहचान होनी चाहिए, और मारिफा कुल सात हैं। नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, नंबर तीन अस्माए इशारा, नंबर चार अस्माए मौसूला, नंबर पांच मारिफा ब निदा, नंबर छह मारिफा ब अलिफ्लाम, और नंबर सात जो इनमें से किसी एक की तरफ मुजाफ हो इलावा मारिफा ब निदा के, उनके इसके अलावा किसी इन बाकी पांच में से किसी की तरफ जो मुजाफ हो। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि मुबतदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू। जहां भी मुबतदा आ जाए आप समझ जाएं इस पर क्या पढ़ना है, रफा। इसी तरह जिस लफ्ज के बारे में भी आपको पता चल जाए कि यह खबर है, साथ ही एक और बात का भी आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पर क्या पढ़ना है, रफा। फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि चाहे रफा हो, चाहे नसब हो, चाहे जर, वो लफजन भी हो सकता है, तकदीरन भी और महलन भी, महलन भी। तो अब आपने गौर करना है कि जो लफ्ज मसलन मुब्तदा आ गया, आपको पता चल गया कि इस पर रफा ही पढ़ना है। कोई हजार दफा आपको कहे इस पर नसब या जर पढ़ना है, आपने कहना, आप कहेंगे कि नहीं, अगर यह मुब्तदा है तो मुब्तदा पर क्या पढ़ना है, रफा पढ़ना है। हां, फिर गौर करना है कि यह मुब्तदा जो है यह मबनी है या मुअरब। अगर मबनी हो तो एराब महलन होता है, और अगर मुअरब हो तो फिर एराब कभी लफजन होता है और कभी तकदीरन। तो लफजन और तकदीरन वो 16 किस्में जो नहमीर में आपने पढ़ी थी, जो हमने भी गुजश्ता से पेवस्ता सबक में हमने कर ली थी, उन उसको बार बार दोहराएं भाई। ये दो चार चीजें हैं याद करने वाली, आप इंशाल्लाह बेहतरीन इबारत हल करने लगेंगे भाई। तो मबनी का एराब हमेशा क्या आएगा, महलन। महलन का क्या माना, महल जगह को कहते हैं, यानी ये जगह रफे वाली है, लेकिन यहां मबनी आ गया। अगर मौरब आता तो रफा जाहिर हो जाता, मबनी को क्या कहेंगे कि मसलन ये मरफू है महलन, यानी ये महल के एतबार से मरफू है, लफ्जों के एतबार से मरफू नहीं, ये रफा को जगह नहीं देता। और फिर आपको मबनियात की पहचान होनी चाहिए ताकि आप मबनी और मौरब में फर्क कर सकें। मबनियात तो वैसे आठ हैं, लेकिन कम से कम तीन तो आपको हर वक्त याद होने चाहिए। वैसे तो आठ याद कर लें कोई मुश्किल नहीं है, आठ चीजें हैं, आठ नाम हैं, लेकिन तीन तो हर वक्त आपके जहन में हो। नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो अस्माए इशारा, और नंबर तीन अस्माए मौसूला। जमीर आ जाए, इसमें इशारा आ जाए या इसमें मौसूला आ जाए, आप समझ जाएं इस पर एराब महलन आएगा, चाहे रफा हो, चाहे नसब हो, चाहे जर हो, जिस जगह पर ये आएंगे लेकिन होंगे महलन ही भाई, इनका एराब महलन होगा। और इसके अलावा जो मौरब की बाकी किस्में हैं उनका एराब या लफ्जन होगा या तकदीरन। लफ्जन का क्या माना कि हम उस एराब पर बाकायदा तलफुज करते हैं, रफा हो तो रफा पर तलफुज होगा, नसब हो तो नसब पर तलफुज होगा, जर हो तो जर। तलफुज का माना यह कि सुनने से ही दूसरे को पता चल जाएगा कि आप इस पर रफा पढ़ रहे हैं, नसब या जर। रजुलन मैंने क्या पढ़ा, रफा, देखो तलफुज से सुनने से ही आपको पता चल गया। रजुलन मैंने क्या पढ़ा, नसब। रजुलिन जर, देखा ये है एराब लफ्जी। और कभी एराब लफ्जी मौरब पर नहीं आ सकता, वहां तकदीरन एराब आता है। तकदीरन का माना है फर्ज कर लो, फर्ज कर लो। जैसे जा मूसा, रअईतु मूसा, मररतु बि मूसा, देखो ये एक में मरफू है, एक में मंसूब, एक में मजरूर, लेकिन एक जैसा रहता है, बदलता नहीं, तो है तो ये मौरब। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो मबनियात हैं, ये जो आठ मबनियात हैं, ये मबनी क्यों हैं, क्योंकि इनकी मुशाबहत है मबनीयुल असल के साथ। इनकी मबनी, कोई चीज वैसे कोई लफ्ज मबनी नहीं बनता जब उसकी मुशाबहत हो जाती है मबनीयुल असल के साथ, फिर वो मबनी कहलाता है। और मबनीयुल असल तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, फेले माजी, नंबर दो फेले अमर, और नंबर तीन तमाम हुरूफ। फेले माजी, फेले अमर और तमाम हुरूफ, ये हैं मबनीयुल असल, यानी जात के एतबार से ही मबनी है। और इनके साथ जिसकी मुशाबहत, जिस इसम की, देखो ये जो तीन हैं इनमें से इसम कोई नहीं, एक फेले माजी है, एक फेले अमर है, और नंबर तीन हुरूफ हैं, इसम कोई नहीं। लेकिन इसम में जो आठ किस्म के मबनी आते हैं वो क्यों मबनी हैं, उनकी इनके साथ मुशाबहत है। और हर मुशाबहत नहीं मुराद, कुछ खास मुशाबहतें हैं जिनका जिक्र उलमाए नहव अपनी किताबों में करते हैं भाई। तो ये आठ मबनी हैं। और फिर मैंने आपको बतलाया था कि ये एराब तकदीरी जो है, कद्दर युकद्दर तकदीर का क्या माना है, फर्ज करना। कद्दर युकद्दर तकदीर का माना है फर्ज करना। तो जा मूसा, रअईतु मूसा, मररतु बि मूसा, इस पर रफा नसब जर तीनों तकदीरी हैं। जा मूसा रफा तकदीरी, रअईतु मूसा नसब तकदीरी, मररतु बि मूसा बा जारा दाखिल हो गई तो ये मजरूर है तकदीरन। मजरूर तकदीरन का क्या माना कि फर्ज कर लो इस पर जर आ गया है। मंसूब तकदीरन हो तो फर्ज कर लो इस पर नसब आ गया है। भाई क्या वजह है, फर्ज क्यों करते हो, मैंने वजह बताई थी कि मबनी एराब को जगह ही नहीं देता, और मौरब वो है जिसका आखिर आवामिल के बदलने से बदलता है। आप देखो ये मूसा और ईसा जैसे अल्फाज, इनकी मबनीउल असल के साथ मुशाबहत नहीं, जब मुशाबहत नहीं तो ये मबनी है नहीं, जब मबनी नहीं है तो मौरब है, तीसरी तो कोई सूरत नहीं। और मौरब उसको कहते हैं जिसका आखिर आवामिल के बदलने से बदलता हो, और इनका आखिर बदल नहीं रहा। तो यहां नहवियों पर एतराज होता था कि भाई ये तो मौरब है, इनका आखिर तो नहीं बदल रहा, फिर ये कैसे मौरब है, ये तो मौरब नहीं है। मौरब की तो आपने क्या तारीफ की, जिसका आखिर बदलता हो अवामिल के बदलने से। तो वो फिर मजबूर हो गए इसको मौरब में दाखिल रखने के लिए, उन्होंने कहा कि फर्ज कर लो बदल गया है। जा अमूसा, फर्ज कर लो रफा आ चुका। रअईतु मूसा, फर्ज कर लो नसब आ चुका। मररतु बि मूसा, फर्ज कर लो जर आ चुका। तो रफा नसब जर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये मौरब के अंदर दाखिल है। मौरब भी वो है जिसका आखिर बदलता है, इसका आखिर भी बदल रहा है, अगरचे लफ्जन नहीं बदल रहा लेकिन तकदीरान बदल रहा है, फर्ज कर लिया आपने बदल रहा है, तो अब ये मौरब की तारीफ में दाखिल है। उसके बाद गुज़श्ता सबक में हमने मौसूफ सिफत की तरकीब शुरू की थी। मैंने आपको बतलाया कि मारिफा के बाद मारिफा एक आए या दो या तीन, तो उमूमन पहला मारिफा मौसूफ बनता है और बाद वाले उसकी सिफत बनते हैं। इसी तरह एक नकिरा के बाद आगे एक नकिरा आए या ज्यादा आ जाए तो पहला मौसूफ बनता है और बाद वाले सिफत बनते हैं, उमूमन, हमेशा नहीं लेकिन उमूमन, और बशर्ते के आखिरी नकिरा के बाद कोई मारिफा ना आए, क्योंकि अगर आखिरी नकिरा के बाद कोई मारिफा आ गया तो फिर वह मुजाफ मुजाफिले भी बन सकते हैं। सूरत समझ में आ गई। और फिर मैंने मौसूफ सिफत के तर्जमा करने का तरीका सिखाया था। मैंने बताया था कि अरबी के अंदर मौसूफ मुकदम होता है और सिफत मुअख्खर होती है। रजुलुन शुजाउन, रजुलुन मौसूफ है और शुजाउन सिफत, लेकिन उर्दू में सिफत मुकदम होती है, तो रजुलुन शुजाउन ये तर्जमा करो, क्या तर्जमा होगा? बहादुर आदमी। यह है नकेरा में, देखो बहादुर आदमी कोई भी हो सकता है, जैद, आमर, बकर, खालिद, कोई भी, ले तो ये नकेरा है, हर एक पर ये सादिक आ सकता है, हर बहादुर आदमी पर। लेकिन जब मारिफा हो अर रजुल शुजाउ, तो अब इसका क्या तर्जमा होगा? वो बहादुर आदमी। देखो अलिफ लाम के जरिए क्या होता है, किसी चीज की तरफ इशारा होता है, तो ये कोई मुतअय्यन आदमी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं जाअनी रजुलुन शुजाउन, कल मेरे पास कोई एक बहादुर आदमी आया था, फअकरमतुर रजुल शुजाअ, तो मैंने उस बहादुर आदमी का इकराम किया। देखो एक खास बहादुर आदमी की तरफ इशारा है, तो ये क्या है? मारिफा। तो इसका तर्जमा क्या करेंगे? अर रजुल शुजाउ, वो बहादुर आदमी या उस बहादुर आदमी, मौके के मुताबिक जिस तरह भी तर्जमा मुनासिब बनता हो, लेकिन करेंगे मारिफा वाला तर्जमा। दूसरा तरीका यह है मौसूफ सिफत के तर्जमा करने का, कि जैसे अरबी में मौसूफ मुकदम था, आप उर्दू में भी मौसूफ को क्या करें? मुकदम ही रखें, लेकिन नकेरा के लिए मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आए, और मारिफा के लिए मौसूफ से पहले वो का लफ्ज ले आए या उसका लफ्ज ले आए। जी, तो रजुलुन शुजाउन पहला तर्जमा बहादुर आदमी, रजुलुन शुजाउन नकेरा है, दूसरा तर्जमा ऐसा आदमी जो के बहादुर है। बात पूरी नहीं हुई। ऐसा आदमी जो के आप कहेंगे उसको क्या हुआ, बात तो पूरी करें, तो आप जब दूसरा कहेगा मेरा वो मेरा दोस्त है, ऐसा आदमी जो के बहादुर है मेरा दोस्त है, देखा अब बात पूरी हो गई। और मारिफा हो अर रजुल शुजाउ, पहला तर्जमा करो वो बहादुर आदमी, और दूसरा तर्जमा करो अर रजुल शुजाउ, वो आदमी जो के बहादुर है। देखो आदमी को पहले रखा और जो के बहादुर है, बहादुर अब भी मुअख्खर है। तो ये दोनों तरीके हैं, जहां आपको जैसा तर्जमा मुनासिब लगे वैसा किया करें भाई। उसके बाद गुज़श्ता सबक में हमने तरकीबें शुरू की थी भाई, तरकीबें। अब एक और छोटा सा ज़ाबता लिख लो भाई, ज़ाबता, जिस इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ जाए, जिस इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ जाए तो वहां हमेशा मुजाफ मुजाफिले की तरकीब होगी, तो वहां हमेशा मुजाफ मुजाफिले की तरकीब होगी। ज़ाब्ता समझ में आ गया? जिस इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ जाए तो वो हमेशा क्या होंगे? मुजाफ मुजाफ इले। फिर आपने ज्यादा नहीं सोचना भाई, बस फौरन मुजाफ मुजाफिले वाली तरकीब कर दें। मसलन गुलामों का, ये आपस में क्या बनेंगे? मुजाफ मुजाफिले। देखो गुलाम इसम है और जिस इसम के साथ क्या आ जाए? ضمیر متصل، کاف ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ، غلام مضاف، کاف ضمیر مضافون الیہ. مضاف پر تو کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، وہ پیچھے عامل کو دیکھنا پڑے گا کہ عامل نصب والا ہے یا رفع والا ہے یا جر والا. تو غلام کا مثلا پیچھے رفع والا عامل تھا، تو غلام پر کون سا اعراب ہوگا؟ رفع. توجہ ہے؟ رفع. لیکن کاف ضمیر کا اعراب آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا تھا، اور وہ کیا؟ وہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے بھائی. جب بھی، توجہ ہے، جب بھی کوئی اسم کس کے ساتھ جڑا ہو، فعل کی بات نہیں کر رہا، حرف کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ اسم کس کے ساتھ جڑے؟ ضمیر متصل کے ساتھ، متصل جو جڑی ہوئی ہو. جب بھی کوئی اسم ضمیر متصل کے ساتھ جڑے تو آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. وہ اسم ہوگا مضاف اور ضمیر ہوگی مضافون الیہ. مضاف پر تو کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، پیچھے عامل کو دیکھنا پڑے گا، کوئی رفع دینا چاہ رہا ہے یا نصب یا جر. لیکن مضاف الیہ کا اعراب ابھی سے آپ کو پتا چل گیا، اس پر کیا پڑھنا ہے؟ وہ مجرور ہوگا. اور کون سا مجرور؟ محلن، کیونکہ ضمیر کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ ضمیر. اور ضمیر پر اعراب کون سا آتا ہے ہمیشہ؟ محلن، کیونکہ مبنیات میں سے ہے. لہذا جاء غلامک، جی یہ غلام کیا ہوگا؟ یہ فاعل بن رہا ہے، تو اعراب بولو. غلام مرفوع لفظان مضاف، اور کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل. آپ نے کہا غلاموں کا کاف ضمیر مجرور محلن ہے. آپ کا ایک ساتھی آیا اور اس نے کہا نہیں بھائی، یہ مجرور نہیں ہے، یہ تو منصوب ہے، اس پر کاف پر آپ زبر پڑھ رہے ہو. غلاموں کا یہ تو منصوب ہے. آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ شاباش، یہ اس کی حرکت ہے، یہ اعراب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مبنی ہے اور مبنی تو اعراب کو جگہ دیتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، غلامہ، غلام مضاف، اور ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. غلامہ غلام مضاف، ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ مضاف الیہ ہے. پھر بولو، مجرور کیوں؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مجرور دنیا میں کتنے ہیں؟ دو ہی تو مجرور ہیں، ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافون الیہ. تو یہ غلام ہو کہ ہا ضمیر مجرور، اور کون سا مجرور؟ محلن. کیوں محلن؟ مبنی ہے، ضمیر ہے، ضمیر ہے، مجرور محلن. آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے غلام ہو، بھائی میں تو ہا کے اوپر پیش پڑھ رہا ہوں، یہ مرفوع ہے، مرفوع، آپ اس کو مجرور کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ اس کی حرکت ہے، یہ اعراب نہیں ہے، یہ مبنی ہے، مبنی پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا. تو مبنی پر چاہے حرکت ہو یا سکون ہو، وہ اس کی اپنی حرکت یا سکون ہوگا، اعراب کی وجہ سے، کوئی عامل کی وجہ سے اس پر رفع نصب یا جر نہیں آ سکتا. جی آگے ترکیب کیجئے بھائی. غلامی، غلامی، رجل کاتب، غلامی رجل کاتب. ہاں بھائی آپ کرو ترکیب. بھائی جو میں نے ضابطے لکھوا دیے انہی کے مطابق میں ترکیبیں لکھوا رہا ہوں بھائی، کوئی زائد ترکیبیں نہیں ہیں. جو ضابطے پڑھ چکے ہیں وہی سارے لگیں گے. بولیے جی.
غلام مرفوع لفظان موصوف.
غلام، توجہ سے بھائی، میں نے ترکیب جملہ لکھوایا غلامی رجل فاضل. اب یہ ترکیب کر رہے ہیں، کہتے ہیں غلام مرفوع، کون سا مرفوع؟ لفظان موصوف. شاباش جی، آپ نے تین جو لفظ کہے، اب ایک ایک کی وجہ بیان کرتے جاؤ. مرفوع کیوں؟ شاباش، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اچھا، لفظن کیوں؟
کیونکہ
इसके रफा पर तलफुज करते हैं, करके दिखाओ।
गुलामुन,
शाबाश। गुलामुन, नसब पर तलफुज करो। गुलामन, जर पर करो। शाबाश। एराबे लफ्जी का इनको पता चल चुका है, बात समझ में आ गई। लेकिन इस वक्त गुलाम के आगे या जमीर है, पढ़ो इसको जरा या के साथ मिलाकर।
गुलामी,
गुलामी किधर है रफा? हां भाई आप बताइए, मुजाफ है ये तो ठीक है, पता चल गया। आपको कैसे पता चला ये मुजाफ है? शाबाश। पूरी बात किया करो कि इसके बाद जमीरें मुत्तसिल आ रही है, इसलिए ये क्या है? मुजाफ। अभी हमने जाब्ता पढ़ा कि जिस इसम के बाद भी क्या आ जाए, जमीर मुत्तसिल, वो आपस में क्या बनते हैं? मुजाफ मुजाफिल है। मालूम हुआ आपने जो कहा मौसूफ वो बात सही नहीं, बल्कि क्या बनेगा ये? मुजाफ बनेगा। अच्छा एराब बोलो इसका भाई, एराब गुलाम का। या का एराब चलो बोलो,
या का
गुलामी या है कि नहीं? इसका एराब बोलो, आप बोलो एराब इसका। मरफू लफजन, शाबाश। मरफू क्यों? मरफू क्यों? हां भाई आप बताओ। मजरूर क्यों? शाबाश। अभी तो मैंने जाब्ता लिखवाया कि जो इसम किसी जमीर के साथ जुड़ेगा वो आपस में क्या बनेंगे, तो इसम होगा मुजाफ और जमीर होगी, और जब जमीर मुजाफिल है तो मुजाफिले का क्या इराब होता है? मजरूर है, ये मुजाफिल है। जब आपने ये बता दिया कि मुजाफिल है तो साथ ही पता चल गया कि इस पर कौन सा इराब पढ़ना है। ये सब चीजें आपको आती हैं, बस चंद दिन में आप देखेंगे बेहतरीन आप तरकीब करेंगे। तो या जमीर मजरूर, कौन सा मजरूर? महलन क्यों, लफजन क्यों नहीं? शाबाश। ये मबनी है, जमीर है, इसका एराब महलन आता है। तो या जमीर का एराब तो आपको पता चल गया कि मजरूर है महलन। गुलाम का एराब बताओ भाई।
गुलाम का एराब मरफू लफजन।
मरफू लफजन कैसे है? पढ़ो जरा इसको, पढ़ो जरा रवानी से।
गुलामी,
या भी कोई मिलाकर पढ़ो।
गुलामी,
गुलामी रफा पढ़ रहे हो आप? अकेला गुलाम होता फिर तो बात ठीक थी, गुलामुन होता, लेकिन ये अब आप पढ़ो गुलामी। मैंने कोई रफा पे तलफुज किया? रफा पे मैंने तलफुज किया? बात तो तलफुज की चल रही है। एराब लफ्जी उसको कहते हैं जिसमें हम बाकायदा उस पर तलफुज करते हैं, एराब पर। हां भाई आप बताइए, गुलाम का एराब
मजरूर लफजन,
मजरूर क्यों? हां भाई ये मजरूर हो सकता है ये गुलाम?
नहीं।
क्यों नहीं?
मुजाफ है, मुजाफ मजरूर।
मुजाफ क्यों नहीं मजरूर हो सकता? मुजाफ मंसूब भी हो सकता है, मरफू भी हो सकता है, मजरूर भी, पीछे आमिल को देखना पड़ेगा। ये मजरूर हो सकता है? हां भाई ये मजरूर हो सकता है?
नहीं।
क्यों?
लेकिन मुजाफ मजरूर नहीं होता।
हां बोलो बोलो, कोई बात नहीं।
आमिल दाखिल,
जर वैसे ही आता है या आमिल की वजह से आता है? गुलाम से पहले कोई आमिल है? चलो आमिल को भी छोड़ो, मजरूर कितने हैं? मैंने बताया है, बार बार बता रहा हूं, मजरूर कितने हैं? एक जिस पर क्या है, गुलाम पे कोई हरफे जर है, बा या लाम या इला या फी है?
नहीं।
दूसरा मुजाफिले, क्या गुलाम मुजाफिले है?
नहीं,
इससे पहले कोई मुजाफ नहीं है। मजरूर तो हो ही नहीं सकता, कतई बात है, तयशुदा बात है, मजरूर नहीं हो सकता। मरफू और मंसूब रह गए, उसकी बात करें। मरफू, मरफू लफ्जन, मरफू क्यों? गुलामुन था की बात न करें, इस वक्त बताएं क्या है। गुलामुन होता तो फिर अब इस पर लफजन कहते, वजह बताओ।
इसका याराब तकदीरी।
क्यों तकदीरी?
इसका याराब इसमें,
फिर इसमें मनकूस की बात कर रहे हैं। इसमें मनकूस किसे कहते हैं? जिसके आखिर में क्या हो, या, और या से माकबल क्या हो, कसरा। जैसे काजी, काजी की या अपनी है या जमीर है? काजी के तो लफ्ज की या अपनी है, और ये गुलामी में गुलाम की या अपनी है या ये जमीर है? ये जमीर है। इसमें मनकूस कहां से? याद रखो इसका एराब तकदीरी है। गुलामी आपने पढ़ा था नहमीर के अंदर, कोई भी इसम जब मुजाफ हो याए मुतकल्लिम की तरफ इलावा जमा मुजक्कर सालिम, उसका एराब तीनों हालतों में क्या होता है? तकदीरी। गुलाम जा गुलामी, रई तो गुलामी, मरर तो भी गुलामी, तो इसका एराब तकदीरी है तीनों। कोई भी इसम दोहराओ भाई, कोई भी इसम जब क्या हो? मुजाफ हो। किसकी तरफ? या मुतकल्लम की तरफ। इलावा किसके? जमा मुजक्कर सालिम का एराब ये नहीं है। उसका एराब वो अगली किस आखिरी किस्म पड़ी थी आपने, तो जब भी कोई इसम मुजाफ हो या मुतकल्लम की तरफ इलावा जमा मुजक्कर सालिम के, उसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है। और फिर यहां एक गुलामी, एक है गुलाम एक है या। गुलाम का एराब अलग बताना है और या का एराब अलग बताना है। अब बताओ गुलाम का एराब भाई, गुलाम का एराब बताओ। मरफू तकदीरन, अभी तो बताया तीनों हालतों में क्या एराब क्या होगा? तकदीरी। मरफू तकदीरन, गुलाम पर तो वैसे रफा आता है, यहां रफा पढ़ रहा हूं मैं गुलामी, तो क्या हुआ एराब? तकदीरी हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये मरफू है तकदीरन मुजाफ, फिर दोहराओ मरफू तकदीरन मुजाफ। मरफू क्यों? मुब्तदा है। तकदीरन क्यों? क्योंकि जमीर क्योंकि मुतकल्लिम की जमीर की तरफ मुजाफ है। और मुजाफ आपको कैसे पता चला ये मुजाफ है? क्योंकि इसके साथ जमीर है मुत्तसिल है। देखो जाबते लगाते जाओ आप हल करते जाएंगे। तो गुलामी इसके अंदर जो गुलाम है वो मरफू तकदीरन मुजाफ। आगे कीजिए तरकीब। या जमीर
मजरूर
महल्लन, शाबाश, मजरूर महल्लन मुजाफिल है। या जमीर मजरूर महल्लन मुजाफिल है। मजरूर क्यों? क्योंकि मुजाफिल है, मुजाफिल है मजरूर होता है। महल्लन क्यों?
क्योंकि
मबनी है, जमीर है, तो मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुबतदा, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर गुलामी। तर्जमा करो मेरा गुलाम। और आपको मैंने बतलाया था मारिफा की सात किस्मों में से आखिरी किस्म क्या थी? कोई इसम बाकी पांच मारिफा में से किसी की तरह मुजाफ हो जाए वो क्या बन जाता है? मारिफा। तो उनमें तो ये गुलाम मुजाफ है किसकी तरफ? जमीर। मारिफा की अकसाम में पहली किस्म क्या थी? जमीरें। उनकी तरफ कोई मुजाफ हो जाएगा वो भी क्या बन जाएगा? मारिफा बन। तो ये गुलामी ये मारिफा है, इसलिए इसको हमने मुबतदा बनाया। और आगे दोनों लफ्ज नकेरा हैं, तो जब मारिफा और नकेरा आपके पास हो और जुमला पूरा हो रहा हो तो मुबतदा किसको बनाओ? मारिफा को। जी आगे तरकीब कीजिए भाई। तो गुलामी रजुलन कातिबुन। अच्छा जी तरकीब कीजिए। रजुल
रजुल मरफू
शाबाश। रजुलन मरफू लफ्जान मौसूफ। मरफू क्यों?
क्योंकि
खबर है और खबर क्या होती है? मरफू। लफ्जान क्यों?
क्योंकि
इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं। करके दिखाओ।
रजुलन
नसब पर, रजुलन जर पर, रजुलिन। मालूम है इस पर तीनों तरह के एराब लफ्जी आते हैं। मरफू लफ्जन मौसूफ। आपको कैसे पता चला ये मौसूफ है?
इसके बाद
नकेरा। हां ये भी नकेरा है और इसके बाद एक और नकेरा है, तो अमूमन ये आपस में क्या बनते हैं? मौसूफ सिफर। याद रखना ये जितने मैं जाब्ते लिखवा रहा हूं ये अक्सरी हैं, कुल्ली नहीं। अक्सर मिसालें आपकी इससे हल हो जाएंगी, लेकिन इसका यह मानना नहीं कि जहां भी दो नकेराएं आप आंखें बंद करके एक दो मौसूफ सिफत बनाने की कोशिश करें। आपने कुछ तर्जमे में भी गौर करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको तरीका आ जाएगा भाई। जी आगे कीजिए। रजुलन मरफू लफ्जन मौसूफ। आगे
कातिबुन मरफू लफ्जन
شابش کاتبن مرفو لفظان صفت مرفو کیوں؟
کیونکہ
صفت ہے اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر، موصوف پر رفع تھا اس لیے کاتبن پر بھی رفع، اگر اس پہ نصب ہوتا تو اس پر بھی نصب، اگر اس پر جر ہوتا تو اس پر بھی جر ہوتا. آگے لفظن کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ. کاتبن نصب پر تلفظ کرو، کاتبن جر پر تلفظ کرو، کاتبن. معلوم ہوا یہ جو کاتب لفظ ہے اس، یہ جہاں کہیں عبارتوں میں آ گیا اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی ہوتے ہیں. جی اب جوڑیے بھائی، موصوف اپنی موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر. بھائی موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا، اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دو. غلامی رجل کاتب. ترجمہ کیجئے.
میرا غلام وہ.
بولو بھائی. موصوف صفت والا ترجمہ پہلے کر لو. رجل کاتب ترجمہ کرو. ایسا کی طرف جاتے ہو، وہ لمبی بات ہے، آسان طریقہ پہلے اختیار کرو. کاتب آدمی، کاتب کو کاتب ہی رہنے دو. کاتب آدمی. ہاں میرا غلام کاتب آدمی ہے. رجل کاتب، رجل موصوف، کاتب اس کی صفت، اور اردو میں صفت کو کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں. تو میرا غلام کاتب آدمی ہے. دیکھو کاتب مقدم اور آدمی مؤخر. میرا غلام کاتب آدمی ہے. دوسرے طریقے سے بھی ترجمہ کر لو. میرا غلام ایسا آدمی ہے. آدمی کو آپ مقدم کرنا ہے موصوف کو. میرا غلام ایسا آدمی ہے جو کاتب ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور جملہ کیجئے، ترکیب کیجئے. غلام زید رجل قوی. غلام زید رجل قوی. قاف دو نقطوں والا، واو اور یا پر شد بھی ڈال دیں، یا پر شد بھی ڈال دیں. غلام زید رجل قوی. چلیے بھائی ترکیب کیجئے.
غلام مضاف
اعراب سب سے پہلے، سب سے پہلے اعراب بولو.
غلام مرفوع لفظاً
مضاف. شابر غلام، غلام مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟
اس کے اعراب پر.
مرفوع کیوں؟ میں نے لفظاً نہیں کہا، لفظاً کی وجہ نہیں پوچھ رہا، مرفوع کی وجہ پوچھ رہا ہوں. یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفو. مرفو لفظن کہا، لفظن کیوں؟ اس کے اعراب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ.
غلام.
ہاں اضافت کے ساتھ پڑھو. غلام زید. نصب پہ تلفظ کرو. غلام زید. جر پہ کرو اضافت کے ساتھ. ویسے اکیلا کرو تو غلامن غلامن غلامن، اور اضافت کی صورت میں تنوین گر جاتی ہے. تو غلام و زید. اچھا تو غلام مرفوع لفظان مضاف. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ ابھی میں نے آپ کو ضابطہ لکھوایا تھا کہ ایک نکرہ کے بعد آگے مزید نکرہ آ جائیں تو وہ آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت، بشرطے کہ آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے. اگر معرفہ آ جائے تو کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. یہاں پر بھی دیکھو غلام ہے نکرہ اور آگے زید آ گیا معرفہ، علم ہے. تو نکرہ کے بعد جب معرفہ آئے تو وہ عموماً آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. جی تو غلام مرفوع لفظان مضاف. آگے
زیدن.
زیدن ٹھیک ہے. اعراب بولو.
زیدن مرفوع لفظان مضاف الیہ.
شاباش زیدن مرفوع لفظان مضاف الیہ. مرفوع کیوں؟
اس کے اعراب پر لفظ کر.
مرفوع کیوں؟
معرفہ،
معرفہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے بس مشق نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. اعراب بولو زید کا.
مجرور ہے،
مجرور ہے. ہاں بھائی مجرور ہے.
مجرور
کیوں؟
مضاف الیہ.
شاباش، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. کون سا مجرور ہے؟ مجرور لفظاً. لفظاً کیوں؟ گھبرایا نہ کریں، غلط ہوگا لیکن جواب دیا کریں فوراً. مجرور کیوں؟ مجرور کون سا؟ ہاں بھائی آپ بتائیے، مجرور کون سا؟ لفظاً کیوں؟ اس کے جر پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ.
زیدن.
زیدن، شاباش. جی جوڑو اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. آگے
رجل مرفوع لفظاً موصوف.
شاباش، رجل مرفوع لفظاً موصوف. دیکھا بالکل آسان ہے، آپ بڑی رفتار سے کرتے چلے جائیں گے. مرفوع کیوں؟
مرفوع اس کے لفظ پر.
مرفوع کیوں؟
موصوف.
موصوف مرفوع ہوتا ہے
خبر سے.
ہاں یہ کیا ہے؟ خبر. مرفوع لفظاً کیوں؟
اس کے رفع پر.
اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھاؤ.
رجلون.
شاباش، مرفوع لفظاً موصوف. آپ نے کہا موصوف ہے، موصوف کیسے پتا چلا آپ کو؟ نکرہ کے بعد آگے پھر کیا آ رہا ہے؟ نکرہ. تو جب دو نکرہ اکٹھے ہوں تو پہلے کو عموماً موصوف بناتے ہیں، دوسرے کو صفت. اور ترجمے میں بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ترجمہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. رجل قوی، ترجمہ کرو طاقتور آدمی، ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر یہ موصوف صفت نہ ہوتے تو ترجمہ ہی ٹھیک نہ ہوتا. رجلون آدمی، مرد، اور قوی مضبوط طاقتور. طاقتور اور اردو میں کیا کرتے ہیں؟ صفت کو مقدم کرتے ہیں، طاقتور آدمی. جی آگے کیجئے. جی قویون، اعراب بولو.
قویون صفت.
اعراب، اعراب.
مرفوع لفظاً
صفت.
صفت
مرفوع لفظاً صفت. مرفوع کیوں؟
اس کے رفع پر.
مرفوع کیوں؟ شاباش، یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. رجلن مرفوع تھا تو قویون بھی مرفوع. اچھا مرفوع لفظاً، لفظاً کیوں؟
اس کے رفع پر.
تلفظ کریں، کر کے دکھاؤ. قویون، نصب پہ تلفظ کرو. قویون، جر پر کرو. قویون. جی تو مرفوع لفظاً صفت. آگے اب جوڑو، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر. پھر جوڑو آگے مزید، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا، اب اس کو روانی سے پڑھ دو.
غلام زیدن رجل قوی.
غلام زیدن رجل قوی، ترجمہ کرو. غلام رجلن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کا غلام. اور رجل قوی کا کیا ترجمہ؟ اب جوڑ دو.
زید کا غلام طاقتور.
زید کا غلام طاقتور آدمی ہے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک ایک لفظ کا دیکھو، غلام بھی مرفوع تھا، رجلن بھی مرفوع تھا، قویون بھی مرفوع تھا، لیکن ہر ایک کی وجہ آپ الگ الگ بیان کر رہے ہیں. غلام میں نے پوچھا کیوں مرفوع، آپ نے کہا مبتدا ہے. رجلن میں نے کہا کیوں مرفوع، آپ نے کہا خبر ہے. اور قویون میں نے پوچھا کیوں مرفوع، آپ نے کہا یہ رجل کی صفت ہے. اچھا قویون، دیکھو اس کے آخر میں یائے مشدد آ گئی. یائے قویون پر رفع پڑھو، قویون نصب پڑھو، قویین جر پڑھو، قویین معرب ہے مبنی ہے، معرب ہے ظاہر سی بات ہے، معرب کی کون سی قسم ہے؟ وہ 16 قسمیں آپ نے پڑھی، شاباش، یہ جاری مجرائے صحیح ہے. جس اسم کے آخر میں یا مشدد آ جائے یا واو مشدد آ جائے وہ کیا ہوگا؟ جاری مجرائے صحیح. اور جاری مجرائے صحیح پر تینوں طرح کے اعراب لفظی آتے تھے، دلون دلون دلوین، اسی طرح قویون قویین قویین، لاہوریون، یہ بھی کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح. جاری مجرائے صحیح کسے کہتے تھے؟ جس کے آخر میں یا واو ہو اور ما قبل کیا ہو؟ ساکن. لاہوریون لاہوریون، یہ تو را کے نیچے تو زیر ہے، حالانکہ جاری مجرائے صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے، اس میں تو آخر سے ما قبل ساکن ہوتا ہے. دل ون واو سے ما قبل لام کیا ہے؟ ساکن. تو یہاں پر تو ہے لاہوریون، یا سے ما قبل راب کے نیچے تو زیر ہے. ہاں شاباش، یہ آپ جواب میں کہیں کہ یہ جو یا مشدد ہے، یہ جو مشدد حرف ہوتا ہے، یہ دو حرف ہوتے ہیں، تو یہ جو یا ہے کتنی یا ہیں؟ دو. ان میں سے پہلی ساکن ہے، دوسری پر حرکت ہے. دیکھا، آخری جو متحرک یا ہے اس سے ماقبل والی یا کیا ہے؟ ساکن. لاہوری یون، دیکھا، پہلی یا ساکن، لاہوری یون، پہلی یا ساکن، دوسری پر حرکت. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جس اسم کے آخر میں کیا ہو، یا مشدد یا واو مشدد ہو، وہ دراصل وہ جاری مجرائے مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، اور اس پر تین طرح کے اعراب آتے ہیں. اب ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب کرتے ہیں. بھائی جملہ فعلیہ توجہ سے سنو، بھائی یاد رکھو، فعل جب بھی آ جائے، چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجہول، وہ ہمیشہ چاہے گا کہ میں کسی ایک اسم کو رفع دے دوں. فعل جب بھی آئے گا وہ کیا چاہے گا؟ کہ میں کسی ایک اسم کو رفع. زبان سے دہراؤ بھائی، جب بھی فعل جب بھی آئے وہ کیا چاہے گا؟ کہ میں کسی ایک اسم کو رفع دے دوں. جس اسم کو وہ فعل رفع دے گا، وہ اگر فعل معروف ہے تو اس کا فاعل کہلائے گا، اور اگر فعل مجہول ہے تو وہ اس کا نائب فاعل کہلائے گا. تو فعل جب بھی آئے اس نے کسی نہ کسی ایک اسم کو رفع ضرور دینا ہے، چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجہول. اور جس اسم کو یہ رفع دے گا، تو اگر یہ فعل معروف تھا تو وہ اسم اس کا کیا کہلائے گا؟ فاعل. اور اگر وہ یہ فعل مجہول تھا تو وہ اسم کیا کہلائے گا؟ نائب فاعل کہلائے گا. اور یاد رکھنا کہ فعل دو قسم پر ہے، ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی ہے. فعل لازم وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے. توجہ ہے؟ فعل لازم جس میں بات صرف کس پر پوری ہو جائے؟ فاعل. اور فعل متعدی جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے. جیسے فر زیدن، فر یا فرو کے معنی ہیں بھاگنے کے، فر زیدن، زید بھاگا، زید دوڑا، جی کسی مفعول کی ضرورت نہیں، معلوم ہوا یہ فعل لازم ہے. فر زیدن، زید بھاگا، مفعول کی ضرورت ہے؟ اور جبکہ زاربا جو ہے یہ فعل متعدی ہے، زاربا زیدن، زید نے پٹائی کی، بھئی کس کی پٹائی کی؟ کوئی مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوئی نہ کوئی مضروب بھی چاہیے بھئی. تو زاربا کیا ہے؟ فعل متعدی. اور فرا کیا ہے؟ فعل لازم. زاربا زیدن عمرن، توجہ ہے، زاربا زیدن عمرن، ترکیب کیجئے، زاربا فعل، زیدن اعراب، بولو اعراب بولو، مرفو لفظان فاعل. جی مرفو کیوں؟ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی عبارت میں کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ فاعل یا نائی فاعل ہے, ساتھ ہی ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ اس پر کیا پڑھنا ہے, رفع پڑھنا ہے. تو ضربا زیدن عمرن, ضربا فعل, زیدن مرفوع لفظان فاعل. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. لفظان کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تو مرفوع لفظان فاعل. عمرن منصوب لفظان مفعول به, مفعول به منصوب ہوتا ہے, مفعول به منصوب ہوتا ہے. تو عمرن مفعول به ہے, مفعول به ہے. اور تو یہ منصوب ہے. اور کون سا منصوب؟ لفظن ہے. کیوں لفظن؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, تلفظ کر رہے ہیں. عمرن لکھیں گے کیسے؟ عین میم را واو الف. ہاں عموماً طلباء یوں ہی کہتے ہیں کہ عین میم را واو اور الف. نہیں بھائی, یہاں واو نہیں لکھیں گے. یاد رکھو یہ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے عمر کے ساتھ واو لکھتے ہیں. عمر اور عمر, عمر میں بھی عین میم را, عمر میں بھی عین میم را. اور قدیم زمانے میں قدیم عربی کے اندر یہ اعراب نہیں تھے, یہ بعد میں مسلمان علماء نے یہ شکل دی ان اعراب کو. عرب کے لیے اپنی زبان تھی, وہ پڑھنا مشکل نہیں تھا, لیکن غیر عرب کے لیے کہاں زبر پڑھنی ہے کہاں زیر, وہ مشکل تھا. تو انہوں نے یہ اعراب اور یہ حرکات جو ہیں ان کو بنایا. اور اب آپ دیکھو کسی کو عربی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اعراب لگے ہوں تو وہ بہترین عبارت پڑھتا ہے. قرآن دیکھ لیں, قرآن ترجمہ آئے یا نہ آئے, بچہ بچہ بہترین قرآن پڑھتا ہے, کیونکہ ہر حرف پر حرکت یا سکون لگا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. تو یہ مسلمان علماء نے محنتیں کی بھائی. تو قدیم زمانے میں یہ اعراب نہیں تھے. تو عمر اور عمر, اس میں بھی عین میم را, عمر میں بھی اور عمر میں بھی, تو فرق نہیں ہوتا تھا. تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے عمر کے آخر میں وہ واو لکھتے تھے. اس سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ عمر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عمر ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ جو عمر ہے یہ غیر منصرف ہے. جاء عمر رأيت عمر مررت بعمر, یہ غیر منصرف ہے. اور عمر جو ہے منصرف ہے. جاء عمر رأيت عمرا مررت بعمر, اس پر تنوین آتی ہے. غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں, اور منصرف پر کسرہ اور تنوین آتی ہے. تو عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو لکھتے ہیں. لیکن جب عمر پر نصب آتا ہے تو رأيت عمرن, رأيت جب عمرن لکھیں گے تو آخر میں واو نہیں لکھنا, الف بس لکھ دیں گے, الف لکھ دیں گے. اس الف کی وجہ سے پتا چل گیا کہ یہاں تنوین پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ عمرن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اور عمر, عمر پر تو تنوین آتی ہی نہیں ہے, لہذا یہاں یہ الف سے ہی فرق ہو جائے گا. حالت رفعی اور جری میں واو کے ذریعے فرق کریں گے, اور حالت نسبی میں صرف کس کے ذریعے؟ الف. جاءنی عمر رأيت عمر, الف ہے. جاءنی عمر رأيت عمر, جی عمر نصب ہے. الف لکھیں گے؟ نہیں. تو یہاں الف نہیں ہے. اور رأيت عمرا الف لکھیں گے, یہ الف سے فرق ہو جائے گا. عمر اس میں الف نہیں, اور عمرا اس میں کیا ہے؟ تو یہ واو کس لیے لکھتے ہیں؟ فرق کرنے کے لیے. تو یہ صرف کون سی حالتوں میں لکھیں گے؟ رفی اور جری حالت میں واو لکھیں گے, اور نصبی حالت میں الف لکھیں گے, واو اور الف دونوں نہیں لکھیں گے. تو ترکیب ہم کر رہے تھے. ضربا زیدن عمران, ضربا فعل, زیدن مرفوع لفظان فاعل, عمران منصوب لفظان مفعول به. مفعول به کیا ہوتا ہے؟ منصوب. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ضربا زیدن عمرن, ترجمہ کرو, زید نے مارا عمر کو, زید نے عمر کی پٹائی کی. ضربا زیدن عمرن, जी, जराबा कौन सा फेल है? फेले मुतअद्दी है। ये किसका तकाजा करता है? मफूल का, मफूल का। अच्छा, दूसरी तरकीब करो। जराबा जैदुन, मैंने अमर को खत्म कर दिया, लफ्जों में नहीं जिक्र किया। जराबा जैदुन जी, अब ये फेले लाजिम है या फेले मुतअद्दी है? हां, मफूल को नहीं जिक्र किया। हां, शाबाश। तो लबा फिर कहते हैं फेले लाजिम है। भाई याद रखो, मफूल को जिक्र करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुतअद्दी है वो मुतअद्दी रहेगा, जो लाजिम है वो लाजिम रहेगा। लिहाजा एक शख्स मफूल को जिक्र करता है, जराबा जैदुन अमरन, तो आप कहते हैं ये जराबा क्या है? फेले मुतअद्दी है। तवज्जो है। और एक मफूल को जिक्र नहीं करता, जराबा जैदुन, तो आप ये ना कहें यह फेले लाजिम है, बल्कि यह भी क्या है? यह भी फेले मुतअद्दी ही है। तो मफूल को जिक्र करें या ना करें इससे इबारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेल मुतअद्दी है तो मुतअद्दी ही रहेगा। तो फेले मुतअद्दी का यह माना नहीं कि उसके आगे मफूल जिक्र होगा। तवज्जो है। फेले मुतअद्दी का यह माना नहीं कि उसके आगे मफूल जिक्र होगा, बल्कि आप उस फेल के मफहूम पर गौर करें जहन में कि इस फेल का वुकूअ बगैर मफूल के हो सकता है या नहीं। मुझे बताइए, बगैर मजरूब के, बगैर मफूल के जर्ब हो सकती है? कोई मजरूब ना हो, आप मुझे जर्ब लगाकर दिखा सकते हैं? जर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए? मजरूब। मालूम हो यह फेले मुतअद्दी है। शुर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए? मशरूब के बगैर शुर्ब कर सकते हो? नहीं भाई, तो मालूम हुआ शुर्ब क्या है? फेले मुतअद्दी है। मशरूब को जिक्र करें या ना करें, शरीब तू, मैंने पिया। क्या पिया? मैंने बेशक जिक्र नहीं किया, लेकिन ये फेल कौन सा है? मुतअद्दी है, क्योंकि शुर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए? मशरूब चाहिए। जरब के लिए हमेशा क्या चाहिए? मजरूब चाहिए। जरब तू, मैंने पिटाई की। किसकी की? मैंने नहीं जिक्र किया, लेकिन फेल कौन सा है? मुतअद्दी है। तो फेल मुतअद्दी में आपने लफ्जों में नहीं देखना कि मफूल है या नहीं, उसके मफहूम पर जहन में गौर करो कि इसके लिए मफूल के बगैर यह फेल हो सकता है या नहीं। अगर नहीं हो सकता तो मालूम हुआ तो यह फेले मुतअद्दी है, और अगर हो सकता है तो यह फेले लाज़िम। फर्रा ज़ैदुन, ज़ैद भागा, इसके लिए किसी मफूल की जरूरत नहीं। माता ज़ैदुन, ज़ैद मर गया, इसके लिए किसी मफूल की जरूरत नहीं। ज़हिका ज़ैदुन, ज़ैद हंसा, इसके लिए किसी मफूल की जरूरत नहीं। लेकिन ज़रबा ज़ैदुन, मफूल बेशक जिक्र नहीं, लेकिन बगैर मजरूब के ज़र्ब नहीं। शरीबा ज़ैदुन, बेशक मशरूब जिक्र नहीं, लेकिन शर्ब बगैर मशरूब के नहीं हो सकता। और इसी तरह अकल, हमजा छोटा काफ और लाम, अकल यानी खाना, अकल बगैर माकूल के नहीं हो सकता। बात सबको समझ में आ गई? तो फेले लाजिम किसको कहते हैं? जिसके लिए मफूल की जरूरत ना हो। और फेले मुतअद्दी किसे कहते हैं? जिसके लिए मफूल की जरूरत हो। क्या मफूल का जिक्र भी जरूरी है? नहीं, जिक्र हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? फिर बाज अफाल एक मफूल चाहते हैं, बाज दो मफूल चाहते हैं, बाज तीन मफूल चाहते हैं। आम अफाल एक ही मफूल चाहते हैं, कुछ अफाल हैं जो दो मफूल चाहते हैं। अअतैतु ज़ैदन दिरहमन, मैंने अता किया, मैंने दिया ज़ैदन, किसको? जैद को। दिरहमन क्या? दिरहम। देखा, अअतैतु ये फेल वफाइल है, और ज़ैदन मफूल है, और मफूल अव्वल है, और दिरहमन क्या है? मफूल सानी। तो आम अफाल जो है वो एक मफूल चाहते हैं, कुछ अफाल हैं वो दो मफूल चाहते हैं, और बहुत थोड़े से अफाल हैं जो तीन मफूल चाहते हैं। तो आम अफाल के लिए आपने दो दो मफूल नहीं तलाश करने। भाई आम अफाल कितने मफूल चाहते हैं? एक। चंद एक हैं जो दो मफूल चाहते हैं, और बहुत ही थोड़े से हैं जो तीन मफूल चाहते हैं, तीन मफूल। तो हम जुमला फेलिया की तरकीब कर रहे थे। तो एक फेले लाजिम है और एक फेले मुतअद्दी। फेले लाजिम सिर्फ फाइल पर बात पूरी हो जाती है, और फेले मुतअद्दी में फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत होती है, लेकिन मफूल का इबारत में जिक्र होना जरूरी नहीं। अक्सर मफूल हजफ भी कर लेते हैं, کبھی مفعول ذکر کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو حذف کر دیتے ہیں، لیکن حذف کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ فعل لازم بن گیا، بلکہ وہ فعل متعدی ہی ہے، البتہ مفعول کو حذف کر لیا، کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے، فا ضاد لام اور گولتا، مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ، فضلہ فا کے فتحہ کے ساتھ، فضلہ کا معنی زائد چیز، زائد چیز، تو مفعول فضلہ ہوتا ہے. تو فعل لازم اور متعدی یہ ہیں بھائی. ہاں اردو میں بھی ان کی ایک پہچان ہے، کہیں آپ کو پریشانی ہو کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی. فعل متعدی کا جب ترجمہ کریں گے تو اس کے اردو ترجمے میں عموماً نے کا لفظ آئے گا، عموماً نے کا لفظ آئے گا. زید نے کھانا کھایا، دیکھو نے آیا یا نہیں، معلوم ہوا کھانا کھانا یہ کون سا فعل ہے، لازم یا متعدی؟ متعدی ہے، کیونکہ ترجمے میں کیا آیا؟ نے. زید نے پٹائی کی، یہ پٹائی کرنا کیا ہے؟ ضربہ زید، ان ترجمہ کرو، زید نے پٹائی کی، نے آ گیا، معلوم ہوا یہ کون سا فعل ہے، فعل متعدی. اکالا زید، زید نے کھایا، یہ کون سا فعل ہے، متعدی. فر زید، زید بھاگا، فعل لازم. شریبا زید، زید نے پیا، فعل. تو یہ اردو میں لفظ نے آئے گا اس کے ترجمے میں عموماً بھائی، یہ ایک نشانی ہے. یاد رکھو فعل جب بھی جملے میں آئے گا وہ ایک اسم کو ضرور رفع دے گا، چاہے وہ فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی، چاہے وہ فعل معروف ہو چاہے فعل مجہول. فعل جب بھی کلام میں آئے گا وہ ہمیشہ کیا کرے گا، کسی ایک اسم کو رفع دے گا، اور جس اسم کو وہ رفع دے گا وہ اس کا فاعل یا نائب فاعل ہوگا. فعل معروف ہو تو وہ اس کا فاعل، اور فعل مجہول ہو تو یہ اس کا نائب فاعل ہوگا. ضرب زید، یہ زید کیا ہے، فاعل ہے. زوریبا زید، یہ زید کیا ہے، نائب فاعل ہے. تو فعل جب بھی آتا ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی ایک اسم کو رفع دیتا ہے، جس اسم کو وہ رفع دے وہ اس کا فاعل یا نائب فاعل ہے. فعل معروف ہے پیچھے تو یہ کیا کہلائے گا، فاعل. فعل معروف اگر پیچھے ہو تو یہ کیا کہلائے گا، فاعل. اور اگر فعل مجہول ہے پیچھے تو یہ نائب فاعل کہلائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی. پھر یاد رکھنا فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی، ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی. یاد رکھو ایک ہے اس میں ضمیر، ایک ہے اس میں ظاہر، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ضمیریں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پانچ قسم کی ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل اور منصوب منفصل، جبکہ مجرور صرف متصل ہوتی ہے منفصل نہیں. تو یہ پانچ قسم کی ضمیریں ہیں اور باقی تمام اسم ان کے علاوہ وہ اسم ظاہر کہلاتے ہیں. ضمیر بھی اسم ہے اور باقی بھی اسم ہیں. دنیا کے سارے اسم اکٹھے کر لیں، اس میں سے ضمیروں کو نکال دیں، یہ 70 ضمیریں ہیں بس، باقی سارے اسم اسم ظاہر کہلاتے ہیں. باقی سارے اسم جی، ہوا ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے، انتا کتاب اس میں ظاہر، جو ضمیر نہیں وہ اس میں ظاہر ہے، کتاب، قلم، زید، عمر، بکر، انا، نحنو، انتا. دیکھا، تو جو بھی ضمیر نہ ہو وہ اسم کیا کہلاتا ہے، اسم ظاہر. اب یاد رکھنا فعل کے لیے ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل آئے اور آگے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے. فعل جب بھی آئے گا وہ چاہے گا میں ایک اسم کو رفع دے دوں، توجہ ہے، فعل جب بھی آئے گا وہ کیا کرے گا، ایک اسم کو رفع دے گا. اور وہ فعل اگر معروف ہوا تو یہ اسم اس کا فاعل کہلائے گا، اور اگر وہ فعل مجہول ہوا تو یہ اسم اس کا نائب فاعل کہلائے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل آ جائے آگے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے. तो फेल जब भी आएगा किसका तकाजा करेगा?
फाइल
या नाई फाइल का। फेले मारूफ हो तो किसका? फाइल का। फेले मजहूल हो तो नाई फाइल का तकाजा करेगा। अब ये जो फाइल या नाई फाइल है, ये इसमें जाहिर भी हो सकता है और जमीर भी, लेकिन होगा एक ही। अगर जमीर फाइल आ गई तो इसमें जाहिर नहीं आ सकता आगे, और अगर इसमें जाहिर फाइल आ गया तो जमीर फाइल। फेल कितनी चीजों को रफा देता है? एक चीज को। तवज्जो है? फेल कितनी चीजों को रफा देगा? एक चीज को। और वो एक जो है इसमें जाहिर भी हो सकता है और जमीर भी। जब जमीर आ जाए तो इसमें जाहिर फाइल नहीं, और अगर इसमें जाहिर फाइल आ जाए तो जमीर फाइल या नाई फाइल नहीं आ सकती। जाब्ता समझ में आया? फिर दोहराओ। फेल मारूफ हो चाहे फेल मजहूल, ये हमेशा किसका तकाजा करेगा? फाइल या नाई फाइल। यानी फेल जब भी आता है वो चाहता है मैं एक इसम को रफा दे दूं, जिस इसम को वो रफा दे वो इसका फाइल या नाई फाइल होगा। फेल मारूफ है तो फाइल होगा, फेल मजहूल है तो नाई फाइल होगा। और याद रखो, फाइल या नाई फाइल के अलावा बाकी जितने लफ्ज जुमले में आएंगे वो या मंसूब होंगे या मजरूर होंगे। फेल जब जुमले में आ जाए तो वो सिर्फ फाइल या नाई फाइल को रफा देगा, बाकी आगे जितने लफ्ज आएंगे वो क्या होंगे? मंसूब या मजरूर। और मजरूर भी आप आराम से पहचान सकते हैं, मजरूर तो दो ही हैं मालूम है, बाकी सारे क्या होंगे? मंसूब होंगे। तरीका समझ में आ गया? ज़राबा ज़ैदुन, तरकीब करें। ज़राबा फेल, ज़ैदुन मरफू लफ्जान फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ज़राबा ज़ैदुन, तर्जमा करें। जैद ने मारा, जैद ने पिटाई की। आपका एक साथी कहता है भाई ज़राबा के अंदर हुआ जमीर होती है, वो आपने नहीं निकाली, आपकी तरकीब गलत है। ज़राबा के अंदर क्या होती है? तो आप जवाब में क्या कहेंगे कि भाई फाइल या नाई फाइल एक आ सकता है, दो नहीं आ सकते। जब ज़राबा ने ज़ैदुन को रफा दे दिया, अब इसके अंदर जमीर नहीं है, ये उसको रफा नहीं दे सकता। और अगर इसके अंदर जमीर निकालते हो तो ये ज़ैदुन इसका फाइल नहीं बन सकता। फाइल या नाई फाइल एक आता है, एक से ज्यादा नहीं। तो अगर सिर्फ ज़राबा हो तो फिर इसके अंदर हुआ जमीर है, और अगर ज़राबा ज़ैदुन हो फिर इसके अंदर हुआ जमीर नहीं। तरीका समझ में आ गया? ज़राबा अमरन, ज़राबा अमरन, तरकीब करो। ज़राबा फेल, आगे हुआ, इसके अंदर फाइल। भाई हुआ जमीर फाइल क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आगे कोई फाइल नहीं है, और फेल जब भी आए हमेशा किसका तकाजा करता है? फाइल या नाई फाइल। ये फेल मारूफ है या मजहूल? मारूफ। तो इसके लिए क्या चाहिए? फाइल। और फाइल आगे कोई है नहीं, अमरन फाइल नहीं, क्योंकि फाइल तो क्या होता है? मरफू होता है, ये तो मंसूब है। जब फाइल नहीं है तो फाइल तो हर हाल में चाहिए, तो इसी के अंदर क्या कर लो? जमीर निकाल लो। तरीका समझ में आया? अच्छा, फेल जब भी आएगा किसका तकाजा करेगा? फाइल या नाई फाइल का तकाजा करेगा, और ये फाइल या नाई फाइल जमीर भी आ सकती है और इसमें जाहिर भी, लेकिन आएगा एक ही। अगर फाइल या नाई फाइल जमीर आ गई तो इसमें जाहिर नहीं आ सकता, और इसमें जाहिर आ जाए तो जमीर नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं कि किन सीगों में फाइल इसमें जाहिर आ सकता है और किन में नहीं। तो याद रखो, पहला और चौथा सीगा जो है, चाहे माजी का हो चाहे मुजारे का हो, पहला सीगा माजी का मसलन क्या है? ज़राबा। और चौथा क्या है? ज़राबत, जिसके आखिर में लंबी ता है, ज़राबा और ज़राबत। इसी तरह मुजारे के अंदर पहला सीगा क्या है? यज़रिबु। और चौथा क्या है? तज़रिबू, यानी पहला सीगा यानी वाहिद मुजक्कर गायब, और चौथा सीगा यानी वाहिद मुअन्नस गायब। तो पहला और चौथा सीगा, इन दो सीगों का फाइल इसमें जाहिर आ सकता है, इन दो सीगों का फाइल इसमें जाहिर आ सकता है। बाकी 12 सीगे जो हैं उनका फाइल हमेशा जमीर होती है, कभी भी इसमें जाहिर नहीं आएगा। पहला या चौथा सीगा, इनका फाइल क्या आ सकता है? जमीर भी और इसमें जाहिर। ज़राबा पहले और चौथे सीगे में से है कि नहीं है? है, जब है तो इस जरबा के लिए फाइल जमीर भी आ सकती है और इसमें जाहिर आगे जरबा जैदुन, ये इसमें जाहिर है, ये भी फाइल बन सकता है। और अगर ये ना हो तो फिर इसी के अंदर क्या करेंगे, जमीर। तो जरबा के लिए फाइल जमीर भी आ सकती है और इसमें जाहिर भी, लेकिन आएगा एक ही। इसी तरह जराबत है, चौथा सीगा वाहिद मुअन्नस, जराबत के अंदर हिया जमीर है और अगर आगे फाइल जाहिर आ गया ज़ैनबु, जराबत ज़ैनबु, तो अब जराबत के अंदर कोई जमीर नहीं है, तवज्जो है। और अगर आगे ज़ैनब कोई इसमें जाहिर ना हो फिर जराबत के अंदर कौन सी जमीर है, हिया। तो पहला और चौथा सीगा, पहला सीगा है मुजक्कर का, चौथा सीगा है मुअन्नस का, ये दो सीगे जो हैं इनका फाइल इसमें जाहिर भी आ सकता है और जमीर भी, ये जब आ जाए तो आपने फिर गौर करना है। जबकि बाकी 12 सीगे आ जाए, चाहे माजी के चाहे मुजारे के, उनमें फाइल हमेशा जमीर होगी जो उसी लफ्ज के साथ जुड़ी हुई होगी या उसी के अंदर छुपी हुई होगी, तो वहां फिर आपको इसमें जाहिर को तलाश करने की जरूरत नहीं। तवज्जो है। एक जुमला आया, उस जुमले के शुरू में है जराबा, जब जराबा है तो जराबा के लिए फाइल इसमें जाहिर आ सकता है या नहीं आ सकता,
आ सकता।
तो अब अगले लफ्जों में तलाश करें, कोई इसमें जाहिर इसका फाइल तो नहीं बन रहा, अगर फाइल बन रहा हो तो उसको रफा दे दें, अगर नहीं बन रहा तो इसी के अंदर क्या निकाल लो, जमीर निकाल लो। इसी तरह जराबत का सीगा आया किसी जुमले के शुरू में, तो जराबत कौन सा सीगा है, चौथा, पहले और चौथे का फाइल जमीर भी आ सकती है, तो ये जराबत चौथा सीगा है। लिहाजा आगे जुमले के अंदर जो लफ्ज हैं उनमें तलाश करो कि कोई इसका फाइल तो नहीं आ रहा, अगर किसी कोई फाइल इसमें जाहिर है ये उसको क्या करेगा, रफा देगा, अगर कोई इसमें जाहिर फाइल नहीं तो इसी के अंदर क्या कर लो, जमीर निकाल लो। बात समझ में आई। तो हासिल कलाम ये, पहला या चौथा सीगा आए तो अगले लफ्जों में फाइल तलाश करो, पहला या तो अगले लफ्जों में किसको तलाश करो, फाइल या नाई फाइल, अगर यानी फेले मारूफ है तो फाइल को तलाश करो, फेले मजहूल है तो
नहीं।
लेकिन अगर पहले या चौथे सीगे के अलावा बाकी 12 सीगों में से कोई सीगा है तो फिर आगे तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, इसी सीगे के साथ जुड़ी हुई या इसके अंदर छुपी हुई जमीर फाइल या नाई फाइल की होगी, इसी के अंदर जमीर जुड़ी हुई या छुपी हुई। हां फिर दोहराओ, फेले मारूफ के लिए हमेशा क्या चाहिए, फाइल, फेले मजहूल के लिए हमेशा क्या चाहिए, नाई फाइल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फेले मारूफ आ जाए और फाइल ना आए,
नहीं
हो सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है फेले मजहूल आ जाए और फाइल ना आए,
नहीं।
फेले मारूफ आए या फेले मजहूल, ये हमेशा किसका तकाजा करते हैं, फाइल, और फाइल एक ही आ सकता है, दो या ज्यादा नहीं। और फाइल या नाई फाइल जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी। इसमें जाहिर किसे कहते हैं, जो भी इसम हो लेकिन जमीर ना हो वो क्या है, इसमें जाहिर। और ये इसमें जाहिर कितने सीगों के लिए फाइल बन सकता है,
दो
सीगे, कौन कौन से, पहला और चौथा, चाहे माजी में हो चाहे मुजारे में। जबकि बाकी 12 सीगों में फाइल हमेशा क्या, फाइल या नाई फाइल हमेशा क्या होगा, जमीर होगी। आइए अब माजी के 14 सीगे और मुजारे के 14 सीगे, इनमें फाइल की पहचान कर लेते हैं। जी, जाराबा, इसके अंदर फाइल क्या है, हुआ जमीर, शाबाश। तो उसका एराब बोलो, मरफू महलन, मरफू क्यों, फाइल है, फाइल मरफू होता है, महलन क्यों, जमीर है, मबनी है। जी, दूसरा सीगा जाराबा, इसमें क्या है फाइल, ये अलिफ है, अलिफ है जाराबा, ये अलिफ क्या है, फाइल, इस अलिफ का एराब बोलो, मरफू महलन, शाबाश, मरफू क्यों, फाइल है, महलन क्यों, मबनी है। जाराबू, इसके अंदर फाइल बोलो, वाव जमीर है, एराब बोलो, मरफू महलन। जाराबत, इसके अंदर हिया जमीर, ये जो ता है ना, ता, ये तानीस की अलामत है, ये जमीर नहीं है। बाकी जितने सीगों के साथ जो जो हरूफ जुड़े हैं वो सारी जमीरें, लेकिन ये जो चौथे सीगे के साथ ता जुड़ जाती है ये तानीस की अलामत है जमीर नहीं। जराबा में देखो अलिफ क्या था फाइल, जराबू में वाव क्या था फाइल, लेकिन जराबत में ये ता फाइल नहीं, ये तानीस की अलामत है। ये सिर्फ इतना बताती है कि ये फेल जिस जात की तरफ इसकी निस्बत, जिस चीज की तरफ इसकी निस्बत की जा रही है वो मुअन्नस है। अच्छा अगला सिगा जराबता, इसमें अलिफ है, ये ता वही वाली है, जराबत वाली ता है, आखिर में अलिफ भी जुड़ गया, तो ये अलिफ तस्निया की जमीर है। अच्छा फिर दोबारा देखो जराबा के अंदर कौन सी जमीर हुआ, ये कौन सी जमीर है, वाहिद मुजक्कर गाइब, जराबा इसमें फाइल क्या है अलिफ, ये अलिफ कौन सी जमीर, जो सीगा हो वो बोल दिया करो, ये अलिफ कौन सी जमीर, तस्निया मुजक्कर गाइब, वो दो आदमी। अच्छा जराबू इसमें फाइल क्या वाओ, ये वाओ कौन सी जमीर है, जमा मुजक्कर गाइब, वो सब आदमी। जराबत इसके अंदर हिया, हिया कौन सी जमीर, वाहिद मुअन्नस गाइब। जराबता इसमें अलिफ, ये अलिफ कौन सी जमीर, तस्निया मुअन्नस गाइब। देखा जराबा में एक अलिफ था वो तस्निया मुजक्कर गाइब का था, और जराबता में जो अलिफ है वो तस्निया मुअन्नस गाइब। जराबन्ना इसमें फाइल क्या नून है, इसमें क्या है नून है, जराबन्ना तवज्जो है, इसका एराब बोलो मरफू महलन, मरफू क्यों फाइल है, महलन क्यों मबनी है, और ये नून कौन सी जमीर है, जमा मुअन्नस गाइब। जराबता इसके अंदर ता जमीर है, ता जमीर है, ता ना कहना ता नहीं, ता जमीर है, वो इसम जो एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, जब उसका नाम लेना हो तो वो नाम लेते हैं जो हुरूफ तहजी में था। जराबता इसके आखिर में ये जो हर्फ जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या है, ता है, तो बास कहते हैं ता फाइल, ता नहीं भाई ता फाइल, क्या है ता फाइल। देखो जाराबा, जाराबा जी फाइल क्या है अलिफ, आ क्यों नहीं कहते, जाराबता में बास ता कहते हैं, तो जाराबा में क्या कहना चाहिए आ फाइल, क्या कहना चाहिए, मैंने बताया जो इसम एक हर्फ पर मुश्तमिल हो आप उसका नाम लेना चाहते हैं तो कौन सा नाम लेंगे, हुरूफ तहज्जी में, हुरूफ तहज्जी में ये जराबा के आखिर में क्या है अलिफ, जराबू इसमें क्या है वाओ, देखा। अच्छा तो जराबना तक हम पहुंच गए थे, जराबता इसमें फाइल की जमीर कौन सी ता जमीर, और एराब बोलो मरफू महल्लन, मरफू महल्लन, तो कोई कहने वाला कहता है कि मरफू नहीं ये मंसूब है, जराबता देखो मैं ता पर जबर पड़ रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे ये ता की हरकत है, ये एराब नहीं, तो ये मरफू महलन, और ये कौन सी जमीर है, वाहिद मुजक्कर हाजिर, जराबता जराबतु मा, ये तुमा कौन सी जमीर, तस्निया मुजक्कर हाजिर, और एराब बोलो मरफू महलन, जराब तुम इसके अंदर फाइल की जमीर कौन सी है तुम जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, और ये जमीर कौन सी है जमा मुजक्कर हाजिर, जराबती इसके अंदर फाइल क्या है, यहां भी ता, देखो एक हर्फ है ना तो नाम लेना है, वो जो हुरूफ तहजी में इस हर्फ को क्या कहते हैं ता कहते हैं, तो इसका फाइल भी ता, और एराब बोलो मरफू महल्लन, और ये जो जेर है ये इसकी हरकत है एराब नहीं, और ये कौन सी जमीर है वाहिद मुअन्नस हाजिर, जो सीगा है वो बोल दिया करें, और जराब तुमा ये कौन सी जमीर है तस्निया मुअन्नस हाजिर, और ये फाइल है, इसका एराब बोलो जराब तुन्ना इसमें फाइल क्या तुन्ना जमीर, इसका एराब बोलो मरफू महल्लन, और ये कौन सी जमीर جمع مؤنث حاضر. ضربت میں یہ تا جڑی ہوئی ہے ساتھ، یہ کہو انا نہیں تا ہے. ضربت میں تا ضمیر، میں نے بتایا تھا یہ جتنے صیغے ہیں جو جو حرف ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں یہ سب ضمیریں ہیں سوائے ضربت کی تا کے. صرف ضربت کی جو تا ہے وہ تانیث کی علامت ہے، وہ ضمیر نہیں. باقی چاہے الف جڑ رہا ہے، چاہے واو، چاہے نون، چاہے تا، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں، ضمیریں ہیں. تو ضربتوں میں فاعل کیا ہے؟ تا ضمیر. اور اس کا اعراب بولو، مرفوع محلن. کوئی کہے گا کہ مرفوع محلن کیسے؟ ضربت، میں تو باقاعدہ رفع کا تلفظ کر رہا ہوں، یہ مرفوع لفظن ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ حرکت ہے، یہ مبنی ہے، ضمیر ہے، ضمیر مبنیات میں سے ہے بھائی. اور کون سی ضمیر ہے؟ واحد متکلم. اور ضربنا اس میں فاعل کیا؟ نا ضمیر. اعراب بولو، مرفوع محل. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ جمع متکلم کی. طریقہ سمجھ میں آ گیا. اب اسی میں ذرا فعل مجہول لے آؤ، زوریبا، اس کے اندر کون سی ضمیر ہوا؟ اعراب بولو، مرفوع محلن. کیوں مرفوع؟ کیوں نائب فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ نائب فاعل. زوریبو، اس کے اندر واو، یہ کیا ہے؟ مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ نائب فاعل. بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، فعل معروف کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل. اس میں ظاہر کتنے صیغوں کے لیے فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہے؟ دو صیغے. کون کون سے؟ پہلا اور چوتھا. یہ تو تھا ماضی. اب مضارع میں ذرا آ جاؤ. مضارع میں یضربو، اس کے اندر ہوا ضمیر. یہ یا کو کیوں نہیں فاعل بناتے؟ یاد رکھو ایک اور قیمتی بات، یاد رکھو فاعل یا نائب فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. مفعول فعل پر مقدم ہو سکتا ہے، فاعل یا نائب فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنی قیمتی باتیں ہیں، یہ چار چھ قیمتی باتیں، ان کو ذہن میں رکھو، پھر کوئی مشکل نہیں فعل کی ترکیب. فعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل. اور وہ فاعل یا نائب فاعل ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اور فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ظاہر صرف کتنے صیغوں کے لیے آ سکتا ہے؟ دو صیغے، وہ پہلا اور چوتھا. اگر وہ صیغے آئیں تو پھر آگے تلاش کرو، کوئی اس میں ظاہر تو نہیں فاعل یا نائب فاعل بن رہا. اگر آگے کوئی فاعل یا نائب فاعل نہ ملے پھر انہی کے اندر کیا نکال لو؟ ضمیر. جبکہ باقی صیغے جب آ جائیں تو پھر آپ کو فاعل یا نائب فاعل آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نیز ایک اور قیمتی ضابطہ کہ جو فاعل یا نائب فاعل ہے کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. ہمیشہ جس کو فعل نے رفع دینا ہے، فعل معروف کس کو رفع دیتا ہے؟ فاعل کو. فعل مجہول کس کو رفع دیتا ہے؟ نائب فاعل. یہ جو فاعل یا نائب فاعل ہیں یہ فعل کے بعد آتے ہیں، کبھی اس پر مقدم نہیں. لہذا اگر کوئی اعتراض کرے یا ضریبو، اس کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر. ضربا، ضربا، ضربو، ضربو میں کون سی ضمیر؟ واو. دیکھا ایک حرف کا اضافہ ہوا، آپ نے کہا یہ فاعل کی ضمیر ہے. اور یا ضریبو کے شروع میں یا ہے، اس کو کیوں نہیں فاعل بناتے؟ ہاں شاباش، آپ جواب دیں گے کہ یہ علامت مضارع ہے فاعل نہیں، کیونکہ یہ یا ضربہ پر مقدم ہو گئی اور فاعل یا نائب فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، فعل کے بعد آ کر جڑ سکتا ہے، فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. تو یضربو کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا. یضربانی، اس میں یاد رکھو یہ کچھ صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، نون اعرابی. یہ ضمیر نہیں ہے، یضربانی یہ نون اعرابی ہے. اور یہ الف جو ہے فاعل کی ضمیر ہے. یہ نون اعرابی دیکھو حالت نصبی اور جزمی میں گر جاتا ہے. لم یضرب، لم یضربا، نون گر گیا یا نہیں؟ تو اس کا اگر یہ ضمیر ہوتا پھر تو فاعل کے بغیر فعل آ جاتا، اور فاعل کے بغیر فعل آ سکتا ہے؟ नहीं मालूम हुआ ये नून एयर। इसी तरह लई अजरीबा, देखो अब भी नून गिर गया, लई अजरीबा वो नून गिर गया। तो ये नून क्या है? एराबी। और नून एराबी सात सीगों में आता है। जमा मुअन्नस के जो दो सीगे हैं उनमें जो नून है वो जमीर है, बाकी जितने नून हैं वो सब क्या है? नून एराबी। कौन से दो सीगों में नून जमीर है? जमा मुअन्नस। यजिबु यजिबानी यजरीबून तजिबु तजरीबानी यजरीबना, ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा। इसी तरह आगे तजरीबु तजिबानी तजिबून तजिबीन तजरीबानी तजरीबना, ये जमा मुअन्नस का सीगा जो है। तो जमा मुअन्नस के जो दो सीगे हैं, एक जमा मुअन्नस गायब, एक जमा मुअन्नस हाजिर, ये दो जो नून हैं ये नून, ये दोनों नून जमीरें हैं। बाकी जितने नून हैं वो क्या हैं? एराबी हैं। वो सिर्फ बतलाते हैं कि ये फेल मरफू है, मंसूब या मजजूम नहीं। इसम में आता है रफा नसब जर, फेल मुजारे में आता है रफा नसब जजम, रफा नसब जजम। यजरीबु रफा, लई यजरीबा नसब, और लम यजरीब जजम। बात समझ में आ गई? तो यजरीबू में कौन सी जमीर हुआ? यजरीबानी में अलिफ और नून एराबी, यजरीबूना में वाव और नून एराबी, तजरीबू में हिया जमीर। तजरीबू देखो, तजरीबू ता है फिर ज़ाद रा बा, भाई ज़ाद रा बा ये तो फेल का मादा है, इसके बाद कोई और हर्फ है नहीं, लिहाजा जमीर इसके अंदर छुपी हुई है। फिर आगे तजरीबानी, इसमें अलिफ, यजरीबना इसमें नून है, ये नून अराबी नहीं है, ये जमा मुअन्नस के सीगे में। फिर आगे तजरीबु, तजरीबु सातवां सीगा, तजरीबु ता ज़ाद रा बा, ता तो फेल पर मुकदम है, वो फाइल हो सकती है नहीं, वो अलामत मुजारे है। ज़ाद रा बा ये तो फेल का मादा है, इसके बाद कोई हर्फ जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, और सीगा कौन सा? वाहिद मुजक्कर हाजिर, तो इसी के अंदर जमीर निकाल लो जो छुपी हुई है, अंता जमीर है। तजरीबू के अंदर अंता, तजरीबानी में अलिफ है और नून एराबी, तजरीबूना वो और ये नून एराबी, तजरीबीना इसमें या है नून एराबी है, तजरीबीन ये जमा मुअन्नस का सीगा है? जमा मुअन्नस के तो दो ही सीगे हैं ना, छठा और बारवा, वो दो नून जो है वो जमीरें हैं, बाकी नून क्या है? एराबी। तो तजरीबीन इसके अंदर जमीर क्या है? या और नून एराबी। भाई आप उसको हालत नस्बी जज्मी में ले जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। तजरीबीन और लम ले आओ, लम तजरीबी, नून गिर गया या नहीं? और लई लन तजरीबी, देखो नून गिर गया। जमीर अगर ये फाइल होता, जमीर होती तो ये तो फाइल होती, और फाइल के बगैर फेल रह जाता, और फाइल के बगैर फेल रह सकता है नहीं, मालूम हो ये नून अराबी था। तो जमीर क्या है? या। तजरीबानी अलिफ, तजरीबना नून, अजरीबू अजरीबु ज़ाद रा बा के बाद कोई हर्फ है नहीं, तो सीगा कौन सा? वाहिद मुतकल्लिम, तो उसकी अंदर जमीर छुपी हुई निकाल लो, आना जमीर। और नज़रीबु नहनो, बात समझ में आ गई? तो ये फेल के अंदर जमीरें हैं, फेल मारूफ हो तो यही फाइल बनेंगे, और फेल मजहूल हो तो यही नायबुल फाइल बनेंगे। तरीका समझ में आ गया? चलिए बस करते हैं भाई, बात अच्छी तरह समझ में आ गई। कल फिर ये जुमला फ़िअलिया की बाकायदा हम तरकीब शुरू, जुमले लिखकर उनकी तरकीब शुरू कर देंगे। तो ये एक मरतबा फिर ये दोहरा लेना, ये जितनी बातें मैंने की हैं। चलिए बस, वहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।